اسماء الحسنا کے سلسلے میں آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نام اللطیف اس کو دیکھیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے. اللطیف کا لفظ لطف سے ہے, لام توئے فا اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں, غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح پوشیدہ حقائق جاننے والا, بھیدوں کو جاننے والا, یہ ہے اللطیف. لطیف کا لفظ جب عربی لغت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے دو ہی معنی بنتے ہیں, ایک معنی مہربان لطف سے, اردو میں ہم بولتے ہیں لطف و کرم, تو مہربانی کے معنوں میں, اور دوسرا معنی ہوتا ہے تھن. ایک چیز ہوتی ہے کثیف, تھک, اس کے بالمقابل کوئی ایسی چیز جو حواس کے ذریعے محسوس اور معلوم نہیں کی جا سکتی, اس کو لطف کہتے ہیں یا لطیف کہتے ہیں. تو دونوں معنی دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پہ, اور دوسرا معنی اتنا لطیف ہے کہ حواس سے اس کو چھوا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کتنا لطیف ہے, اس کی مہربانی کا اظہار تو پانی کی نعمت سے ہوتا ہے, جس برتن میں چاہو ڈال لو, پی لو, بہا دو, بھاپ بن کر اڑا دو, مگر طاقتور اتنا ہے کہ ساری مخلوق کو سیراب کرتا ہے, ان کے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے, درختوں اور کھیتوں تک کو سیراب کروا دیتا ہے, درختوں, پھلوں, انسانوں, جانوروں کی ایک ایک رگ تک پانی پہنچ جاتا ہے. یہ پانی کا لطف ہے نا. آپ کہیں پانی ڈال دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خاص جگہ پہ جائے اور دوسری پہ نہ جائے. آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی درزیں ہوتی ہیں نا بیچ میں, دراڑے, اس کے اندر بھی پانی چلا جاتا ہے. اسی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اللطیف کا بنایا ہوا پانی ہے. لطیف ہواؤں کو کس قدر لطیف بنا دیتا ہے, ہماری ذرا سی حرکت سے پاش پاش ہو جاتی ہیں, دکھائی نہیں دیتی, ہر جگہ موجود ہیں, پہاڑوں کے اندر تک ہوائیں چلی جاتی ہیں, سمندروں کی تہوں میں چلی جاتی ہیں, چٹانوں میں گھستی ہیں, اور طاقت اتنی رکھتی ہیں کہ بڑے بڑے درختوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتی ہیں, سمندروں کی موجوں میں طغیانی برپا کر دیتی ہیں, اور جب ذرا سی تیز چلتی ہیں تو بڑے بڑے محلات کو زمین بوس کر دیتی ہیں, شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی پیدا کردہ ہوا ہے نا. کوئی چیز جتنی لطیف ہوتی ہے نا اتنی ہی طاقتور بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اللطیف ہے تو طاقتور بھی ہے. دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں گیسز کی شکل میں لوگوں نے پیدا کر لیں, ہتھیاروں کی صورت میں کچھ انرجیز کو جمع کر کے بوم بنا لیے کہ جو جہاں چلتے ہیں وہ انسانیت کی موت بن جاتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات ایسی لطیف ہے کہ جو کائنات میں رحمتیں بھی بکھیرتی ہے اور جن کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو پکڑ بھی لیتی ہے. امام خطابی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں کہتے ہیں, اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جو کہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے. سچ ہے نا, انسان خود بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہوگا اور کیا برا ہوگا. اس کی مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے ایسے اسباب ایسی جگہوں سے مہیا فرماتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کرتا. سچ ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف حالات اور واقعات سے گزار کے ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے کہ بندہ خود بھی نہیں سوچتا. کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورا آیت 19 میں فرماتا ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر रोजी देता है जिसको चाहे, और वही है जोर आवर ज़बरदस्त। सच है ना, कितनी प्यारी तारीफ है। आप महसूस करते हैं ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं कि बंदे को पहले पता ही नहीं होता ऐसा होगा। आप देखिए कि अल्लाह ताला की तदबीरें कोई बंदा दुनिया में रह के जान ही नहीं सकता। कोई भी जब कोई काम शुरू होता है तो बंदा नहीं जानता कि ये इंजाम तक कब पहुंचेगा और क्या होगा। लाखों बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं ना, कोई जानता है कि इनमें कल कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनेगा? क्या इब्राहीम की माँ को पता था कि मेरा बच्चा बड़ा होके इतना बड़ा लीडर बनेगा कि 3/4 दुनिया का पेशवा बन जाए? कौन चंगेज़ बनेगा और कौन एशिया और यूरोप को तहोबाला कर देगा? कोई सोच सकता था? जब खुर्दबीन ईजाद हुई थी तो कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि ये ईजाद का सिलसिला एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब तक पहुंच जाएगा? कोलंबस जब निकला था सफ़र के लिए तो क्या उसको पता था कि मैं अमेरिका को डिस्कवर कर दूंगा? ये अल्लाह के मंसूबे होते हैं, इतने बारीक, इतने दकीक। इंसान की अकल वहाँ तक जाती नहीं जहाँ तक अल्लाह ताला अपने मंसूबों के ज़रिए उसको पहुँचा देता है। वो बड़ा मेहरबान है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी आपके कोई एबनॉर्मल हालात आए ना तो घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। वो अल्लतीफ़ जानता है कि आपको कहाँ वो हवाओं की तरह उड़ाना चाहता है, कहाँ वो आपको तोड़ के पानियों की तरह नरम करके बहाना चाहता है। बर्फ़ सख्त हो जाती है ना, जम जाती है, थिक होती है, फ्रीज़ होती है, तो फिर बर्फ़ के सांचे को बाहर रख दें, 2-3 घंटे गर्मी में रहेगा तो पिघल के पानी बनेगा। पानी बनेगा ना तो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें होंगी। बर्फ़ तो सिर्फ़ प्यास बुझाएगी ना, गर्मी से ठंडक का एहसास देगी, लेकिन पानी सफाई भी करेगा, आपका खाना भी पकाएगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा इंसान ज़िंदगियों में इतने स्टबन हो चुके होते हैं कि उनको अपनी सलाहियतें ख़ुद भी नज़र नहीं आती, जमा चुके होते हैं, अंदर जम जाती हैं सलाहियतें। वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो पानी बन के इंसानियत को नफ़ा दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को जमा देते हैं, आराम का आदी कर देते हैं, फ्रीज़ होते हैं। बर्फ़ तो एक लग्जरी की अलामत है ना, या आपको मशरूबात ठंडे करने में मदद देती है या फिर डेड बॉडीज़ को फ्रीज़ करने का काम देती है। दो ही काम है बर्फ़ के, जबकि पानी ज़िंदगी है। पानी गंदगियां दूर करता है, वो मुर्दे को नहलाने में भी काम आता है, उसकी गंदगियों और उसकी हलाइशों को भी पाक करता है। अल्लाह ताला ऐसा लतीफ़ है, हालात की ऐसी गर्मियाँ इंसान की ज़िंदगी में लाता है कि वो वाकई बर्फ़ से पानी बन जाता है। और ये होता कैसे? गैर महसूस तरीके से, स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं ना। बंदे को ख़ुद नहीं पता होता कि मेरी ज़िंदगी में जो मराहल आ रहे हैं ये असल में मुझे बनाना क्या चाहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लतीफ़ का बड़ा ख़ूबसूरत तर्जुमा किया है, खफ़ी। ये कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है, गालिबन सूरत मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि मेरा रब मेरे साथ बड़ा खफ़ी है, मेहरबान के मानों में। और हज़रत इकरमा ने अल्लाह ताला के इस नाम को बार बार और जैसे होता है ना बेर से, बार यानी मुहसिन के मानों में रखा है। यानी इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला लतीफ़ कैसे है कि वो मेहरबान बड़ा है, खुफिया तरीके से मेहरबानियाँ करता रहता है। हम तो किसी को कुछ दें तो साथ ही अपना नाम लिख के दें, टाइटल दें मेड बाय दिस, लेकिन अल्लाह कैसे चुपके चुपके अपनी मेहरबानियाँ करता है। और इकरमा कहते हैं ये मुहसिन है। मकातिल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने सभी बंदों पर मेहरबान है, यहाँ तक के काफिर और फाजिर पर भी। दुनिया में इसकी नेमतें बरसती हैं, हक ताला की इनायात और लुत्फ़ो करम अपने बंदों पर बेशुमार انواع و اقسام کے ہیں. اسی لیے تفسیر قرطبی نے لطیف لفظ کے معنی میں, یعنی لفظ لطیف کے معنی بھی بہت سے بیان فرمائے ہیں, اور حاصل سب کا یہی ہے کہ خفی اور بار. اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور احسان کرتا ہے. اللطیف الذی یوصل الیک, کون ہے لطیف جو تیری حاجت اور ضرورت کو مہربانی اور نرمی سے پورا فرماتا ہے, اور تجھ کو تیرے مطلوبہ ضرورت آسانی اور عزت کے ساتھ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. یہ النہج الاسماء کتاب ہے, جلد 1 صفحہ 260 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی ذات اتنے غیر محسوس طریقے سے آسانیوں کے ساتھ, عزتوں کے ساتھ انسان کی ضروریات پوری کرتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے لوگوں سے جن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے, ہر وقت ہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی بڑا خرچہ نہ آ جائے. لیکن پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, میں ایسے لوگوں کی زبان سے ایک جملہ سنتی ہوں, کہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, جب مجھے ضرورت پڑتی ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے سبب بناتا ہے میرے پاس اتنے ہی پیسے آ جاتے ہیں. کسی بچی کی شادی آ گئی, کسی بچی کے گھر ڈلیوری ہے, اب ماں پریشان ہے, فکر مند ہے کہ اب کچھ مجھے چاہیے, کچھ کروں, تو کہتی اتنے میں پتہ نہیں اللہ کس طرح مجھے اتنے ہی پیسے دلوا دیتا ہے جو میں اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہوں. تو یہ بات سن کے مجھے اللطیف کی بات یاد آتی ہے, کتنی عزت سے ہمارے دنیا میں ہمارے بھرم رکھ رہے ہیں نا. سبحان اللہ. اس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو بھی بڑا تھن سوچنا پڑے گا. میں جب بھی لفظ اللطیف سوچتی ہوں نا تو میرے ذہن میں بٹر فلائی آ جاتی ہے کہ جس کے پر کو آپ ذرا زور سے بھی پکڑے نا تو اس کا رنگ چھوٹنے لگتا ہے, پر آپ کے ہاتھ میں رہ جائیں گے وہ اڑ جائے گی. یہ اللطیف کی کاریگری ہے نا, لطف سے, سو ڈیلیکیٹڈ, یعنی ڈیلیکیسی آتی ہے اس لفظ کے اندر. اللطیف وہ ذات جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو, اگرچہ وہ چیز بہت چھوٹی, باریک اور حقیر ہو, یعنی وہ ہر طرح کی باریکیوں کو جاننے والا ہے, بندوں کے باریک امور سے خوب باخبر ہے, بندوں کے فائدے کی چیزیں جو بندوں سے چھپی ہوئی ہیں, اور ان کے وہ فوائد نفع جو ان کو دور دکھتے ہیں ان سے خوب واقف ہے, بڑی نازک اور رفیق حکمتوں اور تدبیروں والا ہے رب. اللہ لطیف بعبادہ, بہت مہربانی کرنے والا, حد سے زیادہ بندوں پر نرمی کرنے والا. اسی طرح ایک مفسر ہے, حلیمی ان کا نام ہے, فرماتے ہیں اللطیف جل جلالہ, وہ ذات جو اپنے بندوں کے لیے بھلائی اور آسانی چاہتی ہے اور ان کے لیے بھلائی اور آسانی کے اسباب مہیا کرتی ہے. جیسا کہ حضرت یوسف فرماتے ہیں اِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, سورہ یوسف کی آیت 100 ہے. میرا رب تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے, بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا. تو لطیف ہر کام کی تدبیر کرنے والا, مخلوق کی نظروں سے مخفی, فہم سے باہر تدبیریں کرنے والا, یہ اللہ کی ذات ہے. اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. وہ چیز ایسے اس انسان کو مل جاتی ہے جیسے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں غور کیا, کوئی چیز جو آپ کو بڑی مشکل لگ رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے یہ ہوگا نہیں, پھر ایک ہفتے میں ایسے حالات بنے سب ہو گیا. بیٹی کی شادی کے لیے ماں پریشان ہوتی ہے, لگتا ہے اس کی تو کبھی ہوگی نہیں شادی, اس کی عمر بڑھ گئی, پھر آپ دیکھتے ہیں کیسا رشتہ آتا ہے جھٹ پٹے میں, ایک ہفتے دو کے اندر سب باتیں طے ہوئیں اور ایک مہینے میں شادی ہو گئی, اور ماں پریشان ہی ہے یہ ہوا کیسے, ہائے تیاری کیسے کروں گی, پھر ایسے سبب بنے یہ اس نے کر دیا یہ اس نے کر دیا, چلے ایک مہینے کے بعد پتہ چلا بچی اپنے گھر میں چلی گئی اور آپ سوچ میں پریشان ہیں یہ ہوا کیسے. یہ اللطیف کی تدبیریں, جب وہ کسی چیز کو فائدہ دینا چاہتی ہے نا تو ساری مخلوق مل کر اگر اس کے اندر رکاوٹ بنے نا तो रुकावट नहीं बन सकती। और जब अल्लाह किसी चीज़ को मुश्किल में डालना चाहता है ना, तो सारी दुनिया की कोशिशें उस मुश्किल से बंदे को निकाल नहीं सकती। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने क्या इरादा किया कि उनको कुएं में डाल दें, हलाक किया जाए। अल लतीफ़ ने क्या फ़ैसला किया कि उनको कुएं से निकाल कर अज़ीज़े मिस्र के घर में पहुंचा दें। अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने इरादा किया कि आपको जेल में भिजवा दें। अल लतीफ़ जल्ला जलालहू ने अपनी तदबीर लुत्फ़ से उनको जेल से निकाल कर बादशाहत की कुर्सी पर बिठा दिया। भाइयों ने बाप से जुदा करने का इरादा किया, अल लतीफ़ ने सारे ख़ानदान को फिर मिला दिया। ये अल्लाह की ज़ात है, इसके मामलात वही जाने, कोई नहीं कह सकता कि कैसे कहाँ क्या होगा। बस अपने आप को रब के हवाले कर दें, जो रब करना चाहता है ना वो हो के रहता है। ईमान रखिए इस पे, यकीन पैदा कीजिए अपने अंदर, वो लतीफ़ है। मुझे तो पता ही नहीं चलेगा और मेरे काम हो जाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं चलता और मेरे काम वो कर देता है। बस इस तरीके से आप अपने आप को जब जमाएंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके काम करवा देगा। और ये जो इमाम हलीमी की कोटेशन कोट की, ये अल मिनहाजु फी शाबुल ईमान किताब है, जिल्द 1 और पेज नंबर 202 है। एक और कोटेशन अल लतीफ़ के बारे में, वो ज़ात है जिससे कोई चीज़ मख्फी नहीं, राई का दाना जो हैयत यानी शक्ल सूरत के एतबार से बहुत छोटा होता है। देखा हुआ आप लोगों ने, शायद अचार में डालते हैं राई, बहुत छोटा सा दाना होता है, इसका वज़न कुछ भी नहीं होता, बस वो ज़मीन के अंदर किसी चट्टान में हो या आसमानों में से किसी आसमान में हो, जब वक्त आएगा तो अल्लाह सुबहान तआला इसको भी निकाल कर ला खड़े करेंगे, इसलिए कि वही ज़ात बारीक बीन और ख़बरदार है। इसके लिए मुस्तकबिल का कोई राज राज नहीं, और ना बड़े और छोटे, सारे वाक़ियात किसी हिकमत और मसलहत के बग़ैर होते हैं। यानी हर वाक़िया और हर काम जो है ये हिकमत और मसलहत से होती है। सूरत मुल्क में भी अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं ना, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, आयत नंबर 14 है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, वो तो बारीक बीन और ख़बरदार है। ये बारीक बीन है जो बड़ी बारीकियों से हमारे हिसाब ले रहा है, कल क़्यामत के दिन खोल देगा। फ़मैया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा, छोटे से छोटी बुराई खोल के रख देगा और छोटे से छोटी नेकी उसको भी सामने ला के पेश कर देगा। ये उसकी ज़ात है जो बंदे के सारे काम कर रही है। असल बात यह कि बंदा रब की कदर पा ले, उसके लतीफ़ होने का यकीन जब आता है ना, तो बंदा कभी मायूस नहीं होता, वो कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकता ये सोच के इसको तो पता ही नहीं चलेगा, देखो ये तो सीधा सा, ये तो बुद्धू है। नहीं, अल लतीफ़ को पता चल जाता है, वो बताएगा। और अल लतीफ़ कैसा लतीफ़ है कि दरिया और समंदरों की तहों में रहने वाले जानवरों को भी उनका रिस्क पहुंचा रहा है, गैर महसूस तरीके से, किसी को ज़्यादा दे किसी को कम दे, ये उसकी बांट है। किसी को दौलत से ज़्यादा दे रहा है, किसी को सेहत से ज़्यादा दे रहा है, किसी को इल्म और मार्फत से ज़्यादा दे रहा है, हर एक उसकी बांट से लेता है। आप सोचेंगे कि रिस्क के मामले में अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी कैसे हो सकती है। इसके बारे में दो बातें आती हैं कि रिस्क के मामले में अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी बंदों पर दो तरह से है। एक ये कि हर ज़ी रूह को उसके मुनासिब हाल ग़िज़ा और ज़रूरियात अता फरमाता है, ऐसे ही ना, यानी जो जो खाता है उसको वही मिलता है। इवन इंसान होने के नाते देखे कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। कोई दूसरे कल्चर के लोग जो चीज़ बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, आपने कभी उसको मुंह से नहीं लगाया, कोई आपको कहेगा भी तो आप नहीं खाते। फिर लोग जहाँ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ उनको अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। ये अल्लाह का लुत्फ़ है। और दूसरा ये कि वो किसी को इसका पूरा रिस्क उम्र भर का बयक वक्त नहीं दे देता, वरना तो इसकी हिफाजत करना मुश्किल हो जाता, और कितनी भी हिफाजत करता फिर भी वो सड़ने और ख़राब होने से ना बचता। ये तफसीर कुर्तुबी में सूरह शूरा की तफसीर में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 13 पे। सुभान अल्लाह। आप देखिए, दिल तो चाहता है ना एक दफ़ा सारा रिस्क मुझे अभी मिल जाए, वो जो बात आपने पढ़ी होगी कभी बचपन में, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के, इसके पेट से सारे ही अंडे निकाल लूँ, तो मुर्गी भी गई अंडे भी गए। ये अल्लाह का रहम है कि उसने सारा हमें अभी नहीं दे दिया, फिर मर जाते। जो लेना था वो ले लिया, अब जितना खा सके खाए, जो गल गया सड़ गया बासी हो गया, अब उसके बाद भूख से मर जाते क्योंकि इसके नसीब में तो है ही नहीं है। तो ये बात अल्लाह ताला की हमें समझ आती है कि वो वाकई हमसे मोहब्बत करता है। और आप देखिए कि 3-4 लफ्ज़ ज़हन में आ रहे हैं मेरे ये बातें बताते हुए। लतीफ़ के लफ्ज़ के साथ एक तो बटरफ्लाई आ रहा है जो आपको बता चुकी, इसी तरह हवा कितनी लतीफ़ होती है ना। सूरत हिजर आयत 22 में भी आता है, वारसलना रियाह लवाक़िहा फअन्ज़लना मिनस्समाइ माअन फअस्क़ैनाकुमूह वमा अन्तुम लहू बिख़ाज़िनीन। हम ही हवाओं को भेजते हैं जो बादल को पानी से भर देती हैं, फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर वो पानी तुमको पीने को देते हैं और तुम इसको ज़खीरा करके रखने वाले तो ना थे। तुम तो इसको जमा नहीं कर सकते। बहुत सारी मिसालें हैं कुरान पाक में हवाओं के बारे में कि जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह ताला ही चलवाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को कैसे मुसख़र किया लतीफ़ ने, तेज़ करना चाहते तो हवा को तेज़ कर लेते, नीचे उतरना होता तो उसको हल्का करने का हुक्म देते, हवा हल्की होती ये नीचे उतर जाते। ये भी तो अल्लाह ताला की शान है ना। फिर इसी तरह देखिए, तीसरी चीज़ इस नाम से जो आ रही है वो पानी की आ रही है, जिसका जिक्र पहले भी किया। समंदर में पानी होता है, दुनिया में रहने लगे एक इंसान जानवर को घर बैठे कैसे मिलता है, ये सारी तब्दीलियाँ जो आती हैं, पानी कैसे ऊपर उठता है, भाप बनती है, नमक अलग रह जाता है, स्ट्रीम ऊपर जाती है, फिर वो बादलों में बदलती है, फिर बादल बरसते हैं, वो बादल कैसे नहरों पे जाते हैं और होते होते पानी आपके टैब में आ जाता है। अगर पानी बंद हो जाए ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारे पानी को खुश कर दे तो कोई दूसरी ज़ात है जो तुम्हें पानी दे दे। قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ। अगर अल्लाह पानी को खुश कर दे, सारे कुओं का पानी नीचे चला जाए, कोई ज़ात है जो तुम्हें दे सके, और अगर पानी ख़त्म हो जाए, ये ज़मीन बदबू से भर जाए, ज़िंदगी अचीरन हो जाए, इतना नमक हो इस दुनिया में कि इंसान उसको अपने होंठों पे महसूस करे, ये अल्लाह की ज़ात है। सूरत वाक़िया में भी आप पढ़ते हैं आयत 68 से 70 तक, अफ़राइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला देखो तो पानी जो तुम पीते हो क्या तुमने उतारा है इसको बादल से, या हम हैं उतारने वाले, और अगर हम चाहते तो इसको खारा कर दें। फलौला तशकुरून, फिर एहसान क्यों नहीं मानते, दिन रात उसकी नेमतों को लेते हो, उसके लुत्फ़ और करम को लेते हो, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। ये अल्लाह की ज़ात इंसान की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, इतनी बारीक बातें हैं, इतनी बारीकियाँ उसकी ज़ात के और बंदे के बीच में, दुनिया का कोई दूसरा इंसान आपके दिल के हाल जानता ही नहीं है। यह लतीफ़ है जो दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात को भी जान लेता है। शौहर को बीवी के दिल में आने वाली हर बात नहीं पता। माँ जो 9 माह पेट में रखती है, एक दफ़ा बच्चा पेट से जुदा हो गया, माँ को ख़ुद नहीं पता कि अब ये क्या सोच रहा है, अब ये क्या खाएगा, ये क्यों रो रहा है, इसको मुश्किल क्या है, ये परेशान क्यों कर रहा है मुझे। अल्लाह ताला किस तरीके से बंदे के साथ ये सारे मामलात करते हैं। एक लुकमा जो इंसान के पास पका पकाया पहुंच जाता है ना, सिर्फ उसके अंदर आप उस लतीफ़ की मेहरबानियां सोचिए तो गिन नहीं सकते। कितने लोगों के दिलों में डालता है वो लतीफ़, और वो मेहनत करते हैं और सब की मेहनत जमा होती है और वो लुकमा हमारे पास तैयार हो के आता है। बीच में कहीं एक जगह कनेक्शन टूट जाए ना तो हम पा नहीं सकते। इतना लतीफ़ है वो, गोबर और खून में से साफ दूध कौन निकलवाता है, अल्लतीफ़। पत्थरों में से हीरे डायमंड्स कौन निकलवाता है, और मक्खी के पेट से शहद कौन निकलवाता है, और एक रेशम के कीड़े से रेशम कौन निकलवाता है, और सीप में से मोती कौन बनवाता है, और एक गंदे पानी के कतरे को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में कौन बदल रहा है, ये अल्लतीफ। बंदा क्या करे, एक सवाल पैदा होता है। अल्लाह ताला तो मेहरबान है, बंदा क्या करे। पहली बात है कि अपने दिल में लुत्फ पैदा करे, दूसरे बंदों के साथ नरमी से पेश आए, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने और आखरत की भलाइयों को पाने की रग़बत दिलाने वाले के साथ नरमी करे, बंदों के लिए अपने दिल में कुढ़न न पैदा करे। हक सामने आए तो उसको कबूल कर ले। एक शेर है, रिसाइल इमाम गजाली किताब है, उसके सफ़ा 314 में कहते हैं, ऐ वो शख्स जिसे तमन्नाओं ने थका दिया और लंबी उम्मीदों ने उसे धोखे में डाल रखा, क्या तूने नहीं देखा कि दुनिया धोखा ही धोखा है और हमारा इसमें क़याम बहुत मुख्तसर है। अब ये तो तर्जमा है ना, हालांकि अरबी के शेर में बड़ा एक सौती हुसन भी है। जितना बंदा अल्लाह ताला के इस लुत्फ़ को महसूस करेगा ना, उसकी अपनी तबीयत में लुत्फ़ आएगा, यकीन करें। और जब तक लुत्फ़ नहीं आता ना, बात नहीं बनती। आपके दिल में अगर दूसरों के लिए सच्ची मोहब्बत और नरमी नहीं है ना, आप इंसानियत को फ़ायदा नहीं दे सकते। माँ के दिल में बच्चे के लिए जो लुत्फ़ो करम है, ये कहाँ से आता है? अल्लाह की ज़ात देती है, वही है ज़ात जो वाकई बंदे को खैर और आफियत के साथ पहुँचा देती है हर चीज़ में। आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात तो वाकई इतनी प्यारी है कि उस पर आप जिस रंग में भी बात करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। एक और एंगल मेरे जहन में आ रहा है कि अल्लाह ताला का ये लुत्फ़ है ना कि एक फीटस को माँ के पेट में 3 अंधेरों में रख देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको खुराक पहुँचाता है, फिर पैदा होता है तो मुँह से खाने लगता है, उसको पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि दूध कैसे पीना है। रात के अंधेरे में दूध पीता है तो भी उसको पता है कैसे पीना है। आप अंडे को तोड़ें और चूज़ा कैसे निकलता है, कौन उसको सिखाता है कि दाने चुगो। फिर ये अल्लाह की ज़ात, ये अल्लाह के लतीफ़ होने की एक खूबी नहीं है कि पैदा होते ही बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, क्योंकि अभी दूध पीते हुए दांतों की ज़रूरत नहीं है। माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता अगर पैदा होते बच्चे के मुंह में दांत भी होते। अल्लाह अकबर, उसका लुत्फ महसूस करे इंसान तो झुक जाता है। उसको महसूस किया करें। देखिए कि अगर हम अल्लाह ताला के नामों पे गौर करने के बाद अपने दिल में एक अजीब खुशी महसूस करते हैं और हर चीज़ को देखें। अब मैं लतीफ़ लफ्ज़ को सोचूंगी ना, तो मैं हर डेलिकेट चीज़ जब देखूंगी ना, जैसे मतलब स्मूदी बनाते हैं, फ्रूट्स को ब्लेंड करके स्मूदी बन गई, आपको लतीफ़ दिखेगा, लुत्फ़ दिखेगा। आप कोई चीज़ बनाते हैं, हम कहते हैं हाय बहुत मुलायम होनी चाहिए, हलीम है, उसको खोट खोट के आप मुलायम करते हैं ना। अब ये कोई तशबीहात ऐसी नहीं है कि इसको हम लफ्ज़ों के साथ शेयर कर सकें, लेकिन मकसद क्या है कि अपने दिल को रब के साथ जोड़ सके। कितनी ज़रूरियात है ना, जिसका किसी बंदे को नहीं पता चलता और रब आपकी पूरी करा देता है। अल्लाह ताला का लतीफ़ होना बंदे को बहुत तस्कीन देता है, सुकून देता है, खुशी देता है।